हमें कभी मजबूर ना हो, हम उजर बहाने ना करें और हम कभी पीछे ना रहें, क्योंकि असाबिकून अवलून में रहना इंशाल्लाह और बेहतरीन जन्नतों में हिस्सा पाना है इंशाल्लाह। हमें एक एक जन्नत थोड़ी लेनी है अल्लाह सुब्हान तआला से। हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम अक्सिम लना मिन खशियतिक मा तहूल बिही बैनना व बैन मासियतिक, अल्लाह तुम अपना खौफ अता फरमा। और अल्लाह के खौफ वालों को तो कुरान पाक में दो जगह पे बशारत है कि जो अल्लाह का खौफ रखते हैं उनके लिए जन्नतान का वादा है। सूरत रहमान में जाके देख लीजिए, अल्लाह ताला ने उनको एक जन्नत नहीं मिलेगी, उनको दो जन्नतें मिलेंगी। तो हमें भी इंशाल्लाह दो से कम पे तो राजी होना ही नहीं, इंशाल्लाह हमें भी लेनी है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अमल की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। उस्ताद जी हमारे साथ इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं आज का। अल्लाह ताला से बस ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के नफाक से बरी कर दे, और अगर कोई कमी बेशी है तो अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिमु सालिहात, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किसी भी नेकी के करने की तौफीक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से ही इंसान को मिलती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो नेकियाँ छोटी मोटी हमसे होती हैं वो कबूल फरमाए और हमें बड़ी बड़ी नेकियों के करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगी में जो बड़े से बड़ा मौका आए कि जिसमें कुछ करके हम भी सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलें, उस वक्त कहीं हम मजबूरियों की नज़र ना हो जाएं और उस वक्त कहीं हम पीछे ना रह जाएं। रही को मख्तूम में से ग़ज़वा तबूक और उससे पीछे रहने वालों पे बात हो रही है, और हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हिकमत थी। आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह का मामला किया, और कुरान पाक में इस सूरत के बारे में मुख्तलिफ जो आयात आईं उसमें अक्सर सूरत तौबा में आईं। आज इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे हज, जो के बल्कि हज भी कर चुके हम जी। लास्ट सेशन में हमने किया था हज, जो फ़तेह मक्का के बाद का पहला हज था। याद रखिए, एक हज नबी सल्लम ने जो किया था वो आगे आएगा। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, पेज नंबर 593 से ग़ज़वात पर एक नज़र। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, इसको तबूक से आप कह लीजिए बदर से तबूक तक एक अलग सेशन में भी हम कर चुके हैं। इसी तरह मोहसिन इंसानियत के दौरान तलवारों जन्नत तलवारों की छाँव में। आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो मुख्तलिफ ग़ज़वात थे वो क्या थे, और आप अपनी यूथ को ये बातें ज़रूर सुनवाइए, क्योंकि आज प्रोपेगंडा यही है कि अल्लाह के नबी ने शायद तलवार के ज़रिए से मुल्कों के मुल्क फ़तह किए। शुरू करते नखमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ग़ज़वा तबूक के बाद अब हम देख रहे हैं कि चूंकि ये आखिरी ग़ज़वा था आपकी ज़िंदगी का, तो मुख्तलिफ ग़ज़वात जो आपके ज़िंदगी में हुए वो क्यों थे, मकासिद क्या थे। किताब के एतबार से पेज नंबर 593, ग़ज़वात पर एक नज़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात, सराया और फ़ौजी मुहिम्मात तीन चीज़ें हैं। ग़ज़वात, ग़ज़वतुन की जमा, वो जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, यानी बड़ी जंग को कहते हैं। सराया, सरियतुन की जमा, जिसमें खुद तो नहीं गए लेकिन दूसरों को भेजा, और बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी जंगें भी सराया ही थी लेकिन उसमें आप नफ्स नफीस खुद मौजूद नहीं थे। और फ़ौजी मुहिम्मात, छोटे छोटे लश्कर जो कुछ लोगों को गिरोह बनाकर किसी एक ही इमारत में भेज दिए जाते थे। इन सब पर एक नज़र डालने के बाद कोई भी शख्स जो जंग के माहौल, पस मंज़र, और इसी तरह से पेश मंज़र, पस मंज़र होता है बैकग्राउंड, और पेश मंज़र है जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, और आसार और नतायज का इल्म रखता हो, आसार जो असर छोड़े जंगों ने और नतायज जो कि उनके रिजल्ट्स थे। मुराद ये कि जिसको थोड़ी बहुत समझ हो इस बात की कि ये क्या तौर तरीके हैं और किस तरह से होता है। ये तरफ किए बग़ैर नहीं रह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े और बाकमाल फ़ौजी कमांडर थे। आपकी सूझबूझ सबसे ज़्यादा दुरुस्त और आपकी फ़रासत और बेदार मगज़ी सबसे ज़्यादा गहरी थी, यानी कि ही वॉज़ अ वेरी सेंसफुल जर्नैल एंड लीडर। आप जिस तरह नबूवत और रिसालत के औसाफ़ यानी वसफ़ में सैयदुर्रुसुल और आज़मुल अम्बिया थे, इसी तरह फ़ौजी क़्यादत के वसफ़ में भी आप अपनी मिसाल आप थे, यानी यगाना रोज़गार मुराद है के जो के जिसकी कोई मिसाल ना हो, आप ये समझ लीजिए, और नादर अबकरियत के मालिक थे। नादर अबकरियत कह लीजिए यूनिक थे। उर्दू मुश्किल है, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कि लफ्ज़ ही आसान बोलूँ तो आप ख़ुद ही समझ जाएगा कि बुक में जो लिखा है उसका आसान तर्जुमा ये है। आपने जो भी मार्का आरई की, इसके लिए ऐसे हालात और जिहाद, यानी जहद से मुराद है कि किस तरफ जाना है, यानी ऐसे हालात और ऐसी जगहों का इंतखाब फरमाया जो हजम व तदब्बर और हिकमत व शुजात के मुताबिक थे। मुराद है कि अल्लाह के नबी ऐसे नहीं उठ कर गए, या आपने कभी भी किसी जगह अपने साथियों को ऐसे नहीं भेजा, बल्कि आप पहले से हालात की नब्ज़ देख लिया करते थे। इससे एक बहुत ही खूबसूरत लीडरशिप का नुक्ता है, काम की जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ भेजना चाहिए। खुद जाना है तो खुद जाइए, आपके बगैर काम हो सकता है, साथी ही जाके वो काम कर लें तो वहाँ उनको भेजना चाहिए। और जहाँ भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स की ज़रूरत है वहाँ बहुत बड़ी कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी मार्के में हिकमत अमली, लश्कर की तरतीब और हसास यानी सेंसिटिव मराकिस पर इसको मुतय्यन करना, यानी वहाँ लोगों को नॉमिनेट करना, लोगों की जॉब्स असाइन करना, उनकी लोकेशंस, उनकी पोजीशंस को असाइन करना, मौजू तरीन मुकाम जंग का इंतखाब, यानी किस जगह को मैदान जंग बनाया जाए, जैसे बदर के बारे में आप जानते हैं कि कुएं को चूज़ किया गया था, और कुछ और भी जंगों में आता है कि अल्लाह के नबी का ख्याल किसी और तरफ का था लेकिन सहाबी के मशवरे से आपने मुकाम बदल दिया। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप दर्स के लिए जाएं तो कहाँ करें दर्स, कहाँ ना करें, फिर जाने के बाद रूम में कौन किधर बैठे, स्पीकर की चेयर किस तरफ हो, ये वगैरह। यानी ये बहुत अहम काम है, यानी ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से मुतल्लिक हैं। अल्लाह के नबी को ये भी आती थी। याद रखिए कि सिर्फ तलवार चलाने का नाम दीन नहीं है, तलवार चलेगी तो अपने पर भी चल जाएगी, असल चीज़ प्लानिंग है। मैंने जो ज़िंदगी को सीखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतने मुख्तलिफ एंगल से सीखा कि एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भी होना, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट उस चीज़ को खूबसूरत कर देती है। मसला अगर माहौल अच्छा बना दिया जाए, जगह सही चूज़ की जाए, सही दिन चूज़ किया जाए, उस दिन कुछ और ना हो, टाइम ठीक हो, लोगों के मुताबिकत का हो, तो आम सी बात भी वहाँ बहुत फ़ायदा दे देती है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू बी अ गुड टीचर, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी तो जंगें थी। और आपने पीछे सूरह आल इमरान में भी पढ़ा है ना कि भाई इस गदाउत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिनीन लिल मकाइद या लिल क़िताल, क्या आप मोमिनों की जगह मुकर्रर कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी इतना ज़्यादा अपने काम के अंदर इन्वॉल्व थे कि छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते थे। तो क्या पता चला कि जंग के इंतखाब और जंगी प्लानिंग वगैरह में आपसे कभी कोई चूक नहीं हुई, यानी आपने कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, इसीलिए इस बुनियाद पर आपको कभी कोई जिक नहीं उठानी पड़ी, ये भी नोट कीजिए। यानी थोड़ी सी भगदड़ जो उहद में मची, उसके अलावा आपको कभी भी शिकस्त नहीं हुई। तो एक तो हम मानते हैं कि अल्लाह की मदद थी, और ऑफकोर्स कि अल्लाह की मदद तो थी ही, वो तो पहली चीज़ है, लेकिन आपकी प्लानिंग भी थी। इससे पता चलता है कुछ लोग होते हैं जिधर हाथ डालते हैं वो सोना बनने लगती है, जहाँ जाते हैं वहाँ अल्लाह उनसे कुछ ले लेता है। वजह क्या है कि वो प्लान आउट ठीक तरीके से करते हैं, और कई दफ़ा जहाँ नाकामियाँ होती हैं उसके पीछे मिस प्लानिंग और मिस मैनेजमेंट भी होती है। बल्कि इन तमाम जंगी मामलात और मसाइल के सिलसिले में आपने अपने अमली इकदाम से साबित कर दिया कि दुनिया बड़े बड़े कमांडरों के ताल्लुक से जिस तरह की क्यादत का इल्म रखती है, आप इससे बहुत कुछ मुख्तलिफ एक निराली ही किस्म के कमांडर एक निराली ही किस्म की कमांडराना सलाहियत के मालिक थे, जिसके साथ शिकस्त का कोई सवाल ही ना था। इस मौके पर यह अर्ज़ कर देना भी ज़रूरी है कि उहद और हुनैन में जो कुछ पेश आया, इसका सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हिकमत अमली की खामी न थी, बल्कि इसके पीछे हुनैन में कुछ अफराद लश्कर की बास कमज़ोरियाँ कार फरमा थी, और औखत में आपकी नहायत अहम हिकमत अमली और लाजमी हिदायत को नहायत फ़ैसला कुन लम्हात में नज़रअंदाज कर दिया गया था। बड़ा अहम नुक्ता है, इसको नोट कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की एक ताईद हासिल थी, और आज भी ये हर उस इंसान को होगी जो अपने मकसद के साथ सच्चा होगा और जिसकी काम करने का तरीका ठीक होगा, नियत भी ठीक होगी। नियत लोगों को नहीं दिखती, तरीके लोगों को दिखते हैं, और नियतों पे अल्लाह ताला की नज़र है। आज के भी इस गए गुजरे दौर में मुसलमानों को अल्लाह ने ये दो ऐसी नेमतें दी हैं कि अगर वो इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें तो फरिश्ते आए ना आए, लेकिन अल्लाह ताला की मदद किसी न किसी रंग में ज़रूर आएगी। और दूसरी बात क्या पता चली कि लीडर की छोटी सी नाफरमानी जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल देती है। तो समय ना वताना, समा बसर या समा अतात, ये जंगों में भी ज़रूरी है और ज़िंदगी के हर फील्ड में। फिर इन दोनों गज़बात में जब मुसलमानों को शिकस्त उठाने की नौबत आई या नुकसान पहुंचा, तो आपने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, यानी अबकरियत, वो अपनी मिसाल आप थी। आप दुश्मन के मद्दे मुकाबिल डटे रहे और अपनी नादराए रोज़गार हिकमत अमली से इसे या तो इसके मकसद में नाकाम बना दिया, जैसा कि उहद में हुआ, या जंग का पासा इस तरह पलट दिया कि मुसलमानों की शिकस्त फतह में तब्दील हो गई, जैसा कि हुनैन में हुआ। नोट कीजिए इस जुमले को। लीडरशिप क्वालिटीज़ में है कि आपको खुद काम करना आता हो। कभी कभी इंसान एक ऐसी गर्दाप में फंस जाता है कि कोई भी हेल्प आउट नहीं कर सकता, तो उस वक्त लीडर खुद उस जगह पहुँच कर वो काम कर ले। आपको सीना नहीं आता तो अच्छा सिलवा नहीं सकते आप। आपको अगर पकाना नहीं आता तो आप अच्छा पकवा नहीं सकते। ये फितरत का असूल है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ में कम से कम हर चीज़ का बेसिक नॉलेज होना लाजमी है। ये बात है इसमें सीखने की। और दो तरह से आपने जितवाया, एक तो दुश्मन को उसके मकसद में नाकाम किया, और दूसरा ये है कि शिकस्त फतह में बदल गई। दोनों चीज़ें ओहद और हुनैन में देखी गई। हालांकि ओहद जैसी खतरनाक सूरत हाल और हुनैन जैसी बेलगाम भगदड़ सिपा सालारों की कुव्वत फैसला सल्ब कर लेती है और इनके असाब पर इतना बदतरीन असर डालती है कि इन्हें अपने बचाव के अलावा और कोई फिक्र नहीं रह जाती। नोट कीजिएगा। आयरन नर्व्स एक तो चीज़ है लीडरशिप के साथ, दूसरी बात यह कि रिलैक्स्ड, जो बंदा खुद घबरा जाता है और हौलने लगता है, वो दूसरों को भी घबरवाएगा, उनको भी हौलाएगा, हाय हाय ये वो भाग। रिलैक्स्ड, फिर क्या हुआ, आप तो हैं ना, फिर क्या, सब चला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम तो है ना। यानी ये वो लीडरशिप क्वालिटी है कि जो वाकई एक अदना से सिपाही को कमांडर बना सकती है, और वो क्या सेल्फ कंट्रोल, बड़ी से बड़ी मुश्किल में, इमरजेंसी हालात में भी इंसान खड़ा रहे। वो है कि आप कह सकते हैं कि रिस्क टेकर भी होना है और रिलैक्स भी रहना है। ये गुफ्तगू तो इन गज़बात के खालिस फ़ौजी और जंगी पहलू से थी, बाकी रहे दूसरे गोशे तो वो भी बेहद अहम है। आपने इन गज़बात के ज़रिए अमन व अमान कायम किया, फितने की आग बुझाई, इस्लाम और बुत परस्ती की कशमकश में दुश्मन की शौकत तोड़ कर रख दी, और इन्हें इस्लामी दावत व तबलीग की राह हज़ात छोड़ने और मुसालहत करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह आपने इन जंगों की बदौलत ये भी मालूम कर लिया कि आपका साथ देने वालों में से कौन से लोग मुखलिस हैं और कौन से लोग मुनाफिक, जो दिल के अंदर यानी नखा खाना दिल यानी दिल के खानों में छुपाई हुई चीज़ों में गदर और ख़यानत के जज्बात छुपाए हुए हैं। इसको भी नोट कीजिएगा। जंगों का और आज के दौर में कह लीजिए कि मुख्तलिफ मराहल का, प्रोजेक्ट्स का, कुछ चैलेंजेस का, जब दीन के नाम पे वो हमारे सामने आए, तो एक बहुत बड़ा मकसद मुनाफिक और मुखलिस को अलग करना है। कभी अपने छाछ में डालकर गंदम को छाड़ा होगा, ऐसे छाड़े तो आगे आगे सब पत्थर आ जाते हैं, पीछे गंदम है या पीछे वो। जैसे छाछ में डलना एक किस्म की आजमाइश है ना, गंदम तो कहेगी क्या हो गया, मैं सब हिला रहे हैं, जुलजिलो जिलजालन शदीदा, लेकिन आप देखिए कि सही अनाज अलग हो रहा होता है और जो अंदर भूसी और वो बाकी चीज़ें अलग हो रही होती हैं। तो ये जो मुश्किलात आती हैं ना, चाहे मुसलमानों पे इज्तमाही तौर पे या इनफरादी तौर पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मसला आ जाए या आपके खरे खोटे को अलग कर देती हैं। बहुत दुआ किया करें, क्योंकि खोट कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर निकलेगा, या आपको निकाल देगा उस जगह से, या आपके दिल से खोट निकल जाएगा। तो बेहतर है कि इसको दुनिया में ही पीछे ही रख ले इंसान, कुछ भी ना हुआ तो आखिरत में जाकर तो निकलेगा। जब आप किसी कॉज से संजीदा नहीं रहते, या बाहर कुछ और अंदर खाते कुछ और, छोटे मोटे बना कह लीजिए कि मकासिद ही क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला उसको खोल देता है। फिर आपने महाजराई के अमली नमूनों के ज़रिए मुसलमान कमांडरों की एक ज़बरदस्त जमात भी तैयार कर दी, जिन्होंने आपके बाद इराक़ और शाम के मैदानों में फारिस और रूम से टक्कर ली, और जंगी प्लानिंग और टेक्निक में इनके बड़े बड़े कमांडरों को शिकस्त देकर इन्हें इनके मकानात तो और सरजमीन से, अम्बाल और बागात से, चश्मों और खेतों से, आरामदेह और बाइज्जत मुकाम से और मज़ेदार नेमतों से निकाल बाहर किया। कुरान की आयत ही का कह लीजिए ये तर्जमा है कि कैसे घर पड़े रहे और लोग निकल कर चले गए। कौमे मूसा यानी फिरौनियों की तरफ इशारा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गज़बात की बदौलत मुसलमानों के लिए रिहाइश, खेती, पेशे और काम का इंतज़ाम किया। बेघरों और मुख्ताज बनागज़ीनों यानी वो लोग जो हैंड टू माउथ थे, इनके मसाइल हल फरमाए। हथियार यानी वेपन्स, घोड़े, साजो सामान और जंग के अखराजात मुहैया किए, और ये सब कुछ अल्लाह के बंदों पर ज़रा बराबर जुल्म ज़्यादती और जोरो जफा यानी गुनाह करना या बेवफाई करना इसके बगैर हासिल किया। सारी बात का जो अभी तक यहाँ तक हुई उसका खुलासा क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम बहुत बड़े कमांडर थे। आप मौका देखकर बात करते थे, और ना सिर्फ ये कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी में हर जंग जीती, बल्कि बाद में एक ऐसा गिरोह छोड़ा अपने साथियों का कि जिन्होंने आपके बाद फिर इस्लाम के लिए तन मन धन लगाया, और फिर उसमें से जो खोटे थे वो तो निकल गए। नबी सल्लम की वफ़ात की खबर के साथ ही क्या हुआ था ये माने वाले अगले सबकों में पढ़ेंगे। लेकिन जो किसी कॉज के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो कभी नहीं पीछे होते। उनके ऊपर से रोलर कोस्टर्स भी गुजर जाएं, नर्व्स भी ब्रेक हो जाएं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इधर जान दे देंगे। देखिए, वरना तो बंदा मैदान जंग से भाग है कि मैं क्यों मरूं, तो वो तो जान नहीं थे पीछे लेते, अपनी जान से नहीं बचाते थे। आज हम कैसे इसको सोच सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें सीखने की, लेकिन जो बात समझ आने वाली वो क्या कि अंदर से दिल के साथ किसी चीज़ के साथ संजीदगी से साथ जुड़े हुए लोग कभी पीछे नहीं होते। फिर आपने महाजराई के अमली नमूनों के ज़रिए मुसलमान कमांडरों की जमात तैयार की, जिन्होंने आपके बाद इराक़ और शाम के मैदान में फारिस और रूम से टक्कर ली यानी उस वक्त की सुपर पावर्स, और जंगी प्लानिंग और टेक्निक में बड़े बड़े कमांडर से, आप पढ़िए हिस्ट्री कैसे सब कुछ उधर से निकल गया। फिर क्या हुआ कि अल्लाह के नबी ने इन गज़बात की बदौलत मुसलमानों के लिए रिहाइश, खेती, पेशे और काम का इंतज़ाम फरमाया, और वो लोग जिनके घर नहीं थे उनके मसाइल हल किए, जो मोहताज थे उनको उनके प्रॉब्लम शूटर बने, ट्रबल शूटर बने, और इसी तरह जो जंगों में चीज़ें काम आती थी अल्लाह के नबी ने उन सब का इंतज़ाम किया। और बात यह है कि आम तौर पे जंगो जिदाल के साथ जुल्म और ज़्यादती का तसव्वुर आता है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने उन असबाब और वजूहात और अगराज और मकासद को भी तब्दील कर डाला, यानी वो चीज़ें, वो रीज़न्स एंड वो कह लीजिए कि जो डिफरेंट मीन्स थे आपसे पहले, जिनके लिए दौरे जाहिलियत में जंग के शोले भड़का करते थे, यानी दौरे जाहिलियत में जंग नाम थी, जंग नाम थी लूटमार और कत्ल व गारतगरी का, जुल्म व ज्यादती और इंतकाम और तशद्दुद का, कमज़ोरों को कुचलने, आबादियां वीरान करने और इमारतें ढहाने का, औरतों की बेहरमती करने और बूढ़ों, बच्चों और बच्चियों के साथ संग दिली से पेश आने का, खेती बाड़ी और जानवरों को हलाक करने और ज़मीन में तबाही और फसाद मचाने का। मगर इस्लाम ने इस जंग की रुख तब्दील करके इसे एक मुकद्दस जिहाद में बदल दिया, जिसे आप कह सकती हैं कि नहायत मौजू और माकूल असबाब के तहत शुरू किया जाता है, और इसके ज़रिए ऐसे शरीफाना मकासद और बुलंद पाया अगराज हासिल किए जाते हैं जिन्हें हर ज़माने और हर मुल्क में इंसानी माशरे के लिए बायस एज़ाज़ तस्लीम किया गया। यानी आपकी जंगे करने की वजूहात नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थी, क्योंकि अब जंग का मफहूम ये हो गया था कि इंसान को कहर और जुल्म के निज़ाम से निकाल कर अदल व इंसाफ के निज़ाम में लाने की मुसलसल जिद्दोजहद की जाए। यानी एक ऐसे निज़ाम को जिसमें ताकतवर कमज़ोर को खा रहा हो, नोट कीजिएगा ये जुमले भी, एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें ताकतवर कमज़ोर हो जाए जब तक के इससे कमज़ोर का हक ना लिया जाए। इसी तरह जंग का मानी ये हो गया था कि इन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों को निजात दिलाई जाए, जो दुआएं करते रहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से वली बना और अपने पास से मददगार बना। सूरत निसा की आयत का तर्जुमा ही है ये किस्म से। नीज़ इस जंग का मानी ये हो गया कि अल्लाह की ज़मीन को गदर और ख़यानत यानी धोखेबाजी से, जुल्मों सितम और बदी और गुनाह से पाक करके इसकी जगह अमन व अमान, राफत व रहमत, हकूक रसानी यानी हकूक देना और मुरव्वत और इंसानियत का नज़्म बहाल किया जाए। यानी आपकी जंगें लोगों से ज़मीन के टुकड़े लेने के लिए नहीं थी, बल्कि आपके दौर की जो जंगें थीं वो क्या थीं कि जिसमें लोगों को हक दिए जाते। आप देखिए कि एक होता है हक लेना, एक होता है हक देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हक देने वाले थे। आप देखिए कि अगर ये तारीख हम गैर मुस्लिमों के सामने रखें, कभी हो नहीं सकता कि मीठे को कोई कड़वा कहे। ठीक है, दिल में तासुब होता है तो वो मीठा, कम मीठा तो लग सकता है लेकिन कड़वा नहीं हो सकता। और कोई अगर झूठ बोलेगा तो उसका झूठ भी सामने खुलकर आ जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे जिस पे दूसरे लोग कीचड़ उछालते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आज हमें कम अज़ कम इन सारी चीज़ों को लोगों के सामने लाना है। आप देखिए जो शर्मिंदगी होती है ना हमें किसी के बारे में भी, या इस्लाम के बारे में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कभी हो, तो ये हमारी कम इल्मी है। अदरवाइज़ हमारे प्यारे नबी, यानी आप ऐसे सोचिए कि अल्लाह के नबी को आप एक उस्ताद समझिए, और आपके उस्ताद ने कभी गलत बात बतानी ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ इंसानियत के इस्तेहसाल हो, जुल्म व बर्बरियत हो, कोई कॉन्स्परेसीज हो, कुछ साजिशें हो, धोखा हो, लेग पुलिंग हो, नेगेटिविटी हो, तो फिर आप उसको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे पेश कर दीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ख़तरा वहाँ होता है जहाँ दिलों में कुछ और ज़ुबानों पे कुछ और होता है। और आप देख लीजिए कि हक़ की आवाज़ को आप बिला रोक टोक, विदाउट एनी एडिटिंग कहीं भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि कोई अंदर है ही नहीं छुपे हुए मोटिव्स। तो याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लम की जंगें ऐसी क्लियर कट जंगें हैं जैसे आज हम अल्लाह के नबी के ये किस्से एक इल्मी माहौल में पढ़ रहे हैं। इसको भी कोई सुन ले तो कोई हर्ज नहीं, तो अगर अल्लाह के नबी के बारे में कोई जान ले तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपने जंग के लिए शरीफाना जवाबित यानी बड़े डिसेंट किस्म के रूल्स मुकर्रर किए, और अपने फ़ौजियों और कमांडर्स को इनकी पाबंदी करने का हुक्म दिया कि किसी हाल में भी आपने रूल्स ब्रेक नहीं करने। हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अल्लाह के नबी जब किसी शख्स को किसी लश्कर या सरिया का अमीर मुकरर फरमाते, मुराद ये कि आप जब किसी को लीडर बनाते, तो इसे ख़ास अपने नफ्स के बारे में अल्लाह से डरने की नसीहत करते, और इसी तरह दूसरे मुसलमानों के बारे में खैर की वसीयत फरमाते थे। यानी ये भी एक बहुत प्यारी बात है कि आप जिनको भी नॉमिनेट करते थे या कहीं असाइन करते थे तो पहले उनका तज़किया करते, उनकी तरबियत करते, और फिर फरमाते कि आप अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में गज़वा करो, और आप देखिए कि जिसने अल्लाह के साथ कुफर किया इनसे लड़ाई करो, और इसी तरह गजवा करो, ख़यानत ना करो, बदहती ना करो, नाक काट कान वगैरह ना काटो, किसी बच्चे को कत्ल ना करो। ये थी वॉर टैक्टिस, एथिक्स ऑफ वॉर जो अल्लाह के नबी ने सिखाए। आज इन बातों को पेश कीजिए, विद रेफरेंसेस पेश कीजिए, हर मुल्क की ज़ुबान में इसको नकल कीजिए। ये वो बातें हैं जो बाहर पहुँचाने की ज़रूरत है। आप अजीबोगरीब खबरें इधर से उधर करते हैं, फ़ायदा क्या होगा? याद रखिए, दुश्मन चाहता ही ये है आपसे कि आपको गुस्सा आए और आपको एक लफ्ज़ ऐसा बोले कि जिसके बाद वो आपको पकड़ ले। आप कहें हमने तो नहीं बोलना, हम तो इल्मी बात कर सकते हैं, हम अपने प्यारे नबी का ये मिजाज और आपकी ये खूबियाँ पेश करते हैं। इसको अगर कोई झुटलाता है तो 100 दफ़ा झुटला दे, लेकिन फिर आप पे तो कोई बात नहीं आएगी ना। और हमेशा याद रखिए, जिस तरीके से और जिन रस्तों से नबी के दौर में मदद आई थी ना, आज भी ऐसी आएगी, क्योंकि कल भी वही शैतान था जो आज है, कल के फितने भी वही थे जो आज के हैं। तो सीरत पढ़िए आप, ख़ास तौर पे वो दौर पढ़िए सीरत का कि जिसमें आपके बारे में इस तरह की अजीबोगरीब बातें की जाती थी। इसी तरह आप आसानी बरतने का हुक्म देते और फरमाते, आसानी करो, सख्ती ना करो, लोगों को सुकून दिलाओ, नफ़रत ना दिलाओ। जब रात में आप किसी कौम के पास पहुंचते तो सुबह होने से पहले हमला नहीं करते थे, यानी इनिशिएटिव नहीं लेते थे, क्योंकि अनजाने में किसी को मार दिया, सोतों में डाला, ये तो बुज़दिलों की बात है। फिर इस तरह आप किसी को आग जलाने से सख्ती से मना करते थे, यानी किसी को पकड़ा और आग में जला दिया, किसी को आग में जलाने से मना किया। इस तरह बांध कर कत्ल करने या औरतों को मारने और इन्हें कत्ल करने से भी मना किया और लूट मार से रोका। हत्ता कि आपने फरमाया कि जो लूट का माल है वो मुर्दार की तरह ही हराम है, यानी इवन दुश्मन से भी आप लूट मार के कुछ नहीं ले सकते। ये बातें क्या दुश्मनों को दोस्त बनाने वाली नहीं है? इसी तरह आपने खेती बाड़ी तबाह करने, जानवर हलाक करने और दरख्त काटने से मना फरमाया, सिवाय इस सूरत के कि इसकी सख्त ज़रूरत आ पड़े और दरख्त काटे बगैर कोई चारा ना हो। फतेह मक्का के मौके पर आपने ये भी फरमाया कि किसी जख्मी पर हमला ना करो, किसी भागने वाले का पीछा ना करो और किसी कैदी को कत्ल ना करो। आपने ये सुन्नत भी जारी फरमाई कि सफ़ीर को कत्ल ना किया जाए। और आपने जिन लोगों से मुआहदे हुए थे, जिनको आप गैर मुस्लिम शहरी कह सकते हैं, उनके कत्ल से भी नहायत सख्ती से रोका। यहाँ देखिए, ये है अकलियतों के हकूक, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो जिम्मी बन के रहते, जो आपको जिज़िया दे देते, आपसे कोई अहद करते। आप देखिए, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, आप पहले ओथ लेते हैं कि हम आपके मुल्क के साथ सिंसियर रहते हैं, तो आपका उनका माहदा हो गया। तो वहाँ के हुक्मरानों को फिर उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, और उनके कत्ल से आपने रोका। यहाँ तक आपने क्या फरमाया कि कोई ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा जो माहदा कर चुका, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि इसकी खुशबू 40 साल के फासले से आती है। ये और इसी तरह के दूसरे बुलंद पाया कवायद और जवाबित थे, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनकी वजह से जंग का अमल जाहिलियत की गंदगियों से पाक साफ होकर मुकद्दस जिहाद में तब्दील हो गया। ये रुख दिखाइए अपनी जनरेशंस को, ये बहुत ज़रूरी है। आप और मैं अगर इसके ऊपर अपना शरह सदर कर लें तो फिर दूसरों का भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्या सीखा, थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत नहीं पढ़ी थी, पढ़ाई थी, ये सब नहीं पता था। हम मुंह से नहीं बोलते थे, उस दौर में इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अंदर कहीं गिल्ट था। इतनी जंगे क्यों? इस्लाम तो इतना पुरमन है, इस्लाम का मतलब तो पीस है, तो फिर ये सब कुछ हमें क्यों मिलता है? जी, लीडरशिप क्वालिटीज हमें अपने प्यारे नबी की दिख रही हैं इसमें। सोचिए क्या आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें अमली तौर पे समझ आने लगेंगी। क्या एक माँ को लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है माँ को जितनी है उतनी तो किसी को नहीं, क्योंकि उसके पास तो नस्लें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, मैं तो ये बस बात कहती हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह, अपने नबी पर रहमतें भेज, दुरूद भेज, अपने दिल के एक एक खाने के अंदर से नबी सल्लम की मोहब्बत को महसूस किया करें। जब ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे आप अपने ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग की बात करें। एक बहुत अजीमुल मर्तबा, एक बहुत खूबसूरत, बाखलाक, बाकिरदार बुज़ुर्ग हैं आप। और ये प्यार अगर आपके दिल में नबी का भर गया, मैं मान नहीं सकती कि आपको फिर हर वो चीज़ बुरी ना लगने लगे, या वो चीज़ कोई अच्छी लगे जो नबी को बुरी लगती थी। वो पहनावा हो, वो बोल चाल, वो चाल ढाल, वो कुछ भी हो, आपका पूरा लाइफस्टाइल सुन्नतों में ढल जाता है ना, तो फिर आपकी आदत इबादत बनती हैं, और आज के दौर में इसकी ज़रूरत है। और सबसे ज़रा गम अपनी नस्लों का है, बहुत दूर कर दिया हमने उनको अल्लाह के नबी से। हाँ नबी, वो जो बकरियां चराते थे, वो कहते हैं हमने कौन सी चरानी है, थे बड़े मुतबर। आज हम होली समझते हैं नबी सल्लम को, सक्सेसफुल नहीं समझते, इल्ला माशाल्लाह। तो आइए देखते हैं फिर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का अगला रूप। कह लीजिए कि मुश्किलें गईं, वो जो अल्लाह ने सूरह दोहा में कहा ना कि आपका बाद का दौर आगे वाले दौर, अगला दौर पिछले से अच्छा होगा ना। और इसी तरह फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। हाँ, अब आखिरी दौर, जिसको कह लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का एक और शुरू हो रहा है, सैयद क्या है कि लोग दीन में जौक दर जौक दाखिल होने लगे। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Page 596. اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ. یہاں چھوٹی سی بات کروں، حق کے لیے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی دین حق ہے، سچ ہے، شروع میں کوئی شہرت نہیں ہوتی، چند مخلصین ہوتے ہیں جو اٹھا اٹھا کے چیزیں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں. ہوتا تب بھی ان کے حق کی ہے، لیکن لوگوں کو چونکہ نہیں پتہ، آپ کے لیے مارکیٹ نہیں ہوا، ایڈورٹائزڈ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر وہ چند لوگ ہی جمے رہیں اور لوگ ان کو چند سال اس تندہی سے اور اس جوش کے ساتھ دین کے لیے کام کرتا دیکھ لیں کہ سیلف لیس ایفرٹس، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ کیفیت آتی ہے جو ہم بڑھنے لگے ہیں. غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن مارکہ تھا. کب ہوا؟ 8 ہجری میں، جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق اور باطل کی پہچان ثابت ہوا. اسی کی وجہ سے سب کے شبہات یعنی ڈاؤٹس جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا. لکھیے، اصل فتح یہ تھی کہ لوگوں نے آپ کو اتنا کامیاب دیکھا اور اب تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بے تاج بادشاہ کا اگر لفظ کوئی بول دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اچھے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ دیکھیے یہ تو کامیاب ہو گئے، تو کامیاب ہونے والوں کا ساتھ دینے والے بڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، تھکے کھانے والے، بنیادیں کھودنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، شکست خوردہ لوگوں کے ساتھ تھوڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب انسانوں کی ذہنیت ہے، ہم اس پہ ابھی کیا بات کریں. یاد رکھیں کہ حق کی پہچان کثرت نہیں ہے. سب ایک روڈ پہ جا رہے ہیں اور وہ غلط ہے، تو آپ دوسرے پہ جائیے اس یقین کے ساتھ کہ اکثرہم الجاہلون. اکثریت کی بات نہ کریں، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. لیکن جب مکہ کا فتح ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ ان میں بھی کوئی دمخم ہے، تو اب لوگ جو تھے وہ آنے لگے. اور یاد رکھیے، بعد میں آنے والے 100 شروع میں آنے والے 1 سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کامیابیوں کو دیکھ کر آئے گا اس میں کہیں نہ کہیں تو ضرور کوئی دنیا داری بھری ہوگی نا. خیر، عمر بن سلمہ کا بیان ہے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چشمے پر آباد تھے جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے. ہمارے پاس سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. اس آدمی، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا، اس کا کیا حال ہے اور کیسا ہے؟ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے اور اس کے پاس وحی بھیجی ہے اور اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے. اب یہ وہ جو پروپیگنڈے اور بس کہہ لیں کہ اسٹریٹ ٹاکس ہوتی ہیں نا، اس کا ذکر ہے. جب بھی کوئی کام ہوگا لوگ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. تو لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں راستوں میں باتیں کرتے، یہ کرتے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی یہ باتیں یاد کرتا اور گویا کہ یہ میرے سینے میں چپک جاتی، یعنی مجھے یاد رہتی. اور پھر کیا ہوا؟ عرب کیا تھے؟ چاہتے تھے کہ عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. کہتے کیا تھے؟ کہ اسے اور اس کی قوم کو ذرا چھوڑ دو، اپنی کوششیں کر لیں، اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گئے تو اس کے اندر سچے نبی ہیں. اور جب کبھی فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی طرف پیش رفت کی. کس لیے بھلا؟ پہلے تو مدینہ پہ آتے تھے ڈھانے کے لیے، خندقیں کھدوائیں، مارنے مروانے کے لیے آتے تھے، اب صلح کے لیے، اب خیر سگالی، فار گڈ ٹرمز آتے تھے. کہتے ہیں کہ میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی سے مل کر واپس آئے تو فرمایا، یہ جملہ لکھ لیں، میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں اور اسلام کو قوت بخشنے میں، اور اسی طرح اہل عرب کا پوائنٹ آف ویو یعنی موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے ان کو سرنڈر کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا. یعنی مکہ کیا فتح ہوا، چاروں طرف اسلام اسلام ہونے لگا. और ये कैफियत गज़वे तबूक के बाद पुख्ता से पुख्ता तर हो गई। यहाँ भी नोट कीजिएगा, कितनी बड़ी आजमाइश थी तबूक के लिए निकलना, बाकी सब आसान था, निकलना मुश्किल था। पीछे हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसके असरात देखिए, दिलों में इस्लाम की धाक बैठी, गुड रेपिटिशन हो गई, लोग आपको जानने लगे, लोगों को पता चल गया कि ये तो बड़ी बड़ी कुव्वतों से भी नहीं डरते। और इसी तरह आप देखिए तो 9 और 10 हिजरी में मदीना आने वाले वफूद का तांता बंधा हुआ था, यानी लोग ट्रूप्स की शक्ल में और बड़े बड़े ग्रोहों में आते और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे थे। क्या खूबसूरत समा होगा। देखिए खुशी तो होती है नक्स ज़्यादा को आता देखकर, ये तो ईमान का भी तकाज़ा है ना, गुनाह को देखते दिल घुटे और नेकियां करते देखकर खुशी हो। अल्लाह के नबी के नाते से ज़रा इसको फील तो कीजिए। कहाँ एक अबू बकर, खदीजा, फिर अली, फिर जैद, 5-6 मोती थे जो कुछ अरसा आपके साथ ही रहे, फिर अशरब मुबशरा आ गए, फिर एक से एक, और फिर जब उमर का मुसलमान हुए, जब उमर फारूक की इस्लाम लाते हैं तो फिर इस्लाम खुला। और आज क्या हो रहा है सुनिएगा, इस्लामी लश्कर जो फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, इसकी तादाद गज़वे तबूक में जबकि अभी फतेह मक्का पर पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा था, इतनी बढ़ गई कि वो 30,000 फौजियों के ठाठे मारते हुए समंदर में तब्दील हो गया। फिर हम हजरतुलविदा में देखते हैं कि 1,24,000, 1,24,000 या 1,44,000 यानी 44,000 अहले इस्लाम का सैलाब उमड़ पड़ा, यानी लोग क्या थे ऐसे लगता था सैलाब आया हुआ है। आज भी कभी आप ऊपर खड़े होकर हरम को देखें तो उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए लोग एक पानी का रेला ही लगते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द इस तरह लब्बैक पुकारता, तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहता और हमदो तस्बीह के नगमे गुनगुनाता है कि आफाक गूंज उठते हैं और वादियों को अक्सार नगमे तौहीद से मामूर हो जाते हैं, कितनी खुशी होती होगी, कितनी आंखों को ठंडक मिलती थी। ये वो लोग महसूस कर सकते हैं जो 2-4 के साथ मेहनतें कर करके अब लोगों को भुगतने के सही कासिर हैं। इतनी क्वेरीज, इतने सवाल, इतने जवाब, इंसानी तबीयत तो घबराती है लेकिन अंदर से एक सुकून तो आता है ना। तो याद रखिए जब भी कोई फैक्ट्री रात दिन काम करेगी ना तो कुछ लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन अगर सुबह के और शाम के और लोग हों तो जिसका वो काम है वो उसको देकर खुश तो होगा ना। अपने इस छोटे से वजूद को ऐसे यूज़ कीजिए कि ये वापस करना है आप, तो चलो इसमें से जो निचोड़ता है उसको निचोड़ लो और डाई एम्प्टी, जिसको नहीं पता वो दूसरे से पूछ ले, बहुत दफ़ा इस पे बात हुई है। जाने से पहले सब कुछ दे के जाना है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी ग्रोहों में वफूद आते थे, यानी वफद एक नहीं आता था बल्कि पूरे ग्रुप्स आते थे। आज भी आप देखिए कभी एक बंदा आता था, अब तो पूरे पूरे ग्रुप्स आएंगे, आप हमें ले लीजिए, हमसे कुछ कर लें, हम आए करा दें। और आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे अगर आप सही रुख पे चल रहे हैं तो। अहले मगाजी ने जिन वफूद का, अहले मगाजी कौन है, मगाजी किसको कहते हैं, वो हिस्टोरियंस जिन्होंने आपके गज़वात के बारे में लिखा, ठीक है, वो कहते हैं कि 70 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स नबी सल्लम के पास आते, लेकिन यहाँ ना तो इनके ज़िक्र की गुंजाइश है और ना इनके ज़िक्र में कोई फ़ायदा छुपा हुआ है, इसलिए सिर्फ वही गिरोह जिनका ज़िक्र तारीखी हैसियत से अहम हो और नुदरत के हामिल है, यानी बहुत यूनिक थे, कोई ना कोई उस ग्रुप के साथ नई बात थी तो उसका ज़िक्र कर लेते हैं। और यहाँ ये बात भी याद रखिए कि अगर आम कबाइल के जो ग्रुप्स थे वो फतेह मक्का के बाद नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर होना शुरू हुए थे, लेकिन बास बास कबाइल ऐसे भी थे जिनके वफूद फतेह मक्का से पहले ही मदीना आ चुके थे, हम इनका भी जिक्र करते हैं। गोया कि आप कह लीजिए कि हर तरफ से हर एक के मुंह पे एक ही नाम था, शोहरत होने लगी, पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि अच्छी चीज़ सबसे बड़ी खुद मार्केट करती है अपने आप को, जिसको आप कहते हैं वर्ड बाय माउथ, दैट इज़ योर बेस्ट एडवर्टिजमेंट। जो एक दफ़ा आपसे कुछ ले गया वो दोबारा भी आए, कहते हैं कि एक दुकान पर कितने कस्टमर्स आते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बताइए कि कितने रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं, जो दोबारा आ गए ना आपके पास समझिए कि वो आपकी क्वालिटी को कबूल कर गया। तो पहला वफद था वफद अब्दुल कैस। इस कबीले का वफद दो बार खिदमत नबी में हाजिर हुआ था, पहली बार 5 हिजरी में या इससे पहले भी, और दूसरी बार तामुल वफूद जो 9 हिजरी था उसमें आया। पहली बार इसकी आमद की वजह यह थी कि इस कबीले का एक शख्स जिसका नाम था मुनकिस बिन हब्बान सामान्य तिजारत लेकर मदीना आया जाया करता था। वह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पहली बार मदीना आया और इसे इस्लाम का इल्म हुआ तो वो मुसलमान हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त लेकर अपनी कौम के पास गया। इन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी नोट करिएगा, एक आता था और बाकियों के लिए इस्लाम साथ ले जाता था। इनके 13 या 14 आदमियों का एक वफद हुरमत वाले महीने में खिदमत नबी में हाजिर हुआ। इसी दफ़ा इस वफद ने नबी सल्लम से ईमान और मशरूबात के बारे में सवाल किया था। इस वफद का सरबरा अल अशजो अल असरी था, जिसके बारे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इन नफ़ी कल खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खसलतें या दो आदात ऐसी हैं, युहिब्बुहुमुर रहमान, जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है, अल हिल्मु वल इना, दूरंदेशी और बुर्दबारी। ए अल्लाह हमारे अंदर ये दोनों डाल दे। दूसरी बार इस कबीले का वफद जैसा कि बताया गया कि वफूद वाले साल में आया था। इस वक्त इनकी तादाद 40 थी और इनमें आला बिन जारूद आबदी था जो क्रिश्चियन था लेकिन मुसलमान हो गया और इसका इस्लाम खूब रहा। तो सारा लश्कर तो भाग भाग के अल्लाह के नबी के पास आ रहा है, लेकिन अशजो जो हैं सवारी से उतरे, खुद को साफ सुथरा किया, सफ़र की गंदगी पसीना ख़त्म किया और साफ सुथरे कपड़े पहनकर नबी के पास आए। तो इस पे आपने ये खुशखबरी दी। इससे पता चलता है कि दीन का काम करने वालों का ज़ाहरी हाल हुलिया भी साफ सुथरा होना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी, उनका चलना, उनका बात करना इतना महज़ब हो कि दूसरे लोग इससे भी मुतासिर हों। फिर इसी तरह दूसरा वफद था वफद दौस। किसका होगा ये कबीला, याद करें? सन 9 हिजरी के अवाइल यानी मिडल में मदीना आया ये वफद। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे और इस कबीले के सरबराह हज़रत तुफैल बिन अमर दौसी थे रदी अल्लाह अन्हो, जो इसी वक्त मुसलमान हुए थे जब अल्लाह के नबी मक्का में थे। फिर उन्होंने जाकर अपनी कौम में तबलीग की दावत का काम किया, लेकिन कौम बराबर टालती रही और बस पोस्टपोन करती रही, यहाँ तक कि हज़रत तुफैल जब इनसे मायूस हो गए फिर उन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि आप कबीला दौस पर बददुआ कर दीजिए। लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह दौस को हिदायत दे, और आपकी इस दुआ के बाद इस कबीले के लोग मुसलमान हो गए। हज़रत तुफैल ने अपनी कौम के 70 या 80 यानी 70 और 80 घरानों की जमीयत लेकर सन 7 हिजरी के दरमियान में इस वक्त मदीना हिजरत की जब आप खैबर में तशरीफ़ फरमा थे, और इसके बाद हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हो खैबर में आपके साथ जा मिले। जी कबीला दोस्त किसका था, याद आया? सोच लीजिए, अभी भी आगे जाके फिर समझ आ जाएगा, और भी ना आया तो पूछ लीजिएगा। तीसरा कबीला था फरवा बिन अमर जुज़ामी का, पैगाम रसा। हज़रत फरवा रूमी सिपाहियों के अंदर एक अरबी कमांडर थे। इन्हें रोमियों ने अपनी हदूद से मिले हुए अरब इलाकों का गवर्नर बना दिया और इनका मरकज़ मान, जिसको आज आप जॉर्डन कह सकते हैं, साउथ साइड उसकी, वहाँ था। और अब इसके अमलदारी गिरदोपेश के इलाके में थी, यानी ये जॉर्डन के इर्द गिर्द के इलाकों में था। उन्होंने जंगे मूता जो सन 8 हिजरी में हुई, वहाँ मुसलमानों की मारकाराई बहादुरी और जंगी पुख्तगी को देखकर इस्लाम कबूल किया और एक एम्बेसडर यानी कासिद भेजकर अल्लाह के नबी को अपने मुसलमान होने की इत्तला दी। तोहफे में एक सफ़ेद खच्चर भी भेजा था। और रूमियों को इनके मुसलमान होने का इल्म हुआ तो उन्होंने पहले तो इन्हें गिरफ्तार करके क़ैद किया, फिर इख्तियार दिया कि या तो मुर्तद हो जाएं या मौत के लिए तैयार रहें। और उन्होंने इस्लाम छोड़ने की बजाय मौत को तरजीह दी और इनको फिर फ़लस्तीन में अफरा नाम के एक चश्मे पर सूली देकर शहीद कर दिया गया। यानी छोटी छोटी कुर्बानियाँ अभी भी लोगों को देनी ही पड़ी। फिर सर चौथा वफद था वफद सदा। ये सन 8 हिजरी में जेराना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजरे खिदमत हुआ। इसकी वजह क्या हुई कि अल्लाह के नबी ने 400 मुसलमानों की एक मुहिम यानी एक ग्रुप तैयार करके उसे हुक्म दिया कि यमन का वो गोशा रौंद आए जिसमें कबीला सदा रहता है। ये मुहिम अभी वादी कनात के सिरे पर ही खैमा जन थी कि हज़रत ज़याद बिन हारिस सदाई को इसका इल्म हो गया, तो वो भाग कर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे पीछे जो लोग हैं मैं इनके नुमाइंदे की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ, आप अपना लश्कर वापस बुला लें, मैं आपके लिए अपनी कौम का जामिन हूँ। यानी गोया के सरेंडर कर दिया, गिव अप किया। क्या वैसे वो दौर था, लोग पहले से ही डरे होते थे और अगर अल्लाह के नबी किसी को उधर भेज देते तो लोग फौरन गिव अप कर देते। आपने वादी कनात ही से लश्कर वापस बुला लिया, ये भी नोट कीजिए। आपका अगर मकसद लड़ना भिड़ना या कोई माल गनीमत होता तो आप उसकी बात को क्यों इतनी अहमियत देते? यानी जब लोग सरेंडर कर देते तो आप बस उनको अपने सीने से लगा लेते। इसके बाद हज़रत ज़याद ने अपनी कौम में वापस जाकर उनको तरगीब दी कि अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हों। इनकी तरगीब यानी रग़बत दिलाने पर, मोटिवेशन पर 15 लोग अल्लाह के नबी के पास आए, इस्लाम कबूल किया, बैत की, फिर अपनी कौम में वापस जाकर इस्लाम की तबलीग की और इनमें इस तरह इस्लाम फैल गया। और हजरत अलविदा के मौके पर इनके 100 आदमियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शर्फ़े बारियाबी हासिल किया, यानी आपसे मुलाकात की। गोया कि हजरत अलविदा के लश्कर में 100 के करीब लोग सिर्फ इस एक कबीले के थे। इसी तरह काब बिन जुहैर बिन अबी सलमा की आमद थी। ये शख्स एक शायर खान वादे का चश्मो चिराग था। मुराजे के इसकी फैमिली में शायरी आम थी। खुद भी अरब का अजीम तरीन शायर था और ये काफिर था और नबी सल्लम की हज्व किया करता था। इमाम हाकिम के बकौल ये भी मुजरिमों की फहरिस्त में था जिनके बारे में फतह मक्का के मौके पर कहा गया कि अगर वो खाना काबा का पर्दा पकड़े हुए भी पाए जाएं तो भी इनकी गर्दन मार दी जाए, यानी इश्तहारी मुजरिम थे। लेकिन ये शख्स बच निकला। इधर अल्लाह के नबी ने जब गज़वाए ताइफ जो 8 हिजरी से में हुआ वहाँ से वापस आए तो काब के पास इसके भाई बुजैर बिन जुहैर ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने मक्का के कई इन अफराद को कत्ल करा दिया जो आपकी हज्व करते थे, यानी मजाक उड़ाते थे, तौहीन रिसालत थी और आपको ईज़ाएँ पहुँचाते थे। कुरैश के बचे खुचे शोरा में से जिनके जिधर सींग समाए उधर निकल भागा, यानी जान बचा कर भाग गए। लिहाजा अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो अल्लाह के नबी के पास उड़कर आ जाओ, क्योंकि कोई भी शख्स, ये जुमला नोट कीजिएगा, कोई भी शख्स तौबा करके आपके पास आ जाए तो आप इसे कत्ल नहीं करते, और अगर ये बात मंजूर नहीं तो फिर जहाँ निजात मिल सके निकल भागो। इसके बाद दोनों भाइयों में मज़ीद ख़तो किताबत हुई जिसके नतीजे में काब बिन जुहैर को ज़मीन तंग महसूस होने लगी और इसे अपनी जान के लाले पड़ते नज़र आए, यानी उसको लगा कि सरेंडर नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा। इसलिए आखिरकार फिर वो मदीना आया और जो है ना कि एक आदमी के घर में मेहमान बन के ठहरा और फिर उसी के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी। नमाज से फारिग हुए तो जो जोहैनी थे उन्होंने इशारा किया कि उठकर अल्लाह के नबी के पास जाकर बैठिए, और ये गए और अपना हाथ फिर आपके हाथ में दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नहीं पहचानते थे क्योंकि एक नया चेहरा था। इससे भी क्या पता चलता है कि आपको गैब नहीं मालूम था। आप ऐसे नहीं कि आपको बस रात जाते ही सारी चीज़ों की खबर हो जाती थी, तो जब एक नए बंदे को आप भी फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि न जाने ये कौन है। और फिर ऐसे ही बात इसमें हमें समझ आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको नहीं पहचाना तो ज़रा पूछा कि बताइए आप कौन है, कैसे आए, क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल काब बिन जुहैर तौबा करके मुसलमान हो गया है और आपसे अमन का ख्वासगार बनकर आया है, तो क्या अगर मैं इसे आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं तो आप इसके इस्लाम को कबूल फरमा लेंगे? आपने फरमाया हाँ। उसने कहा मैं ही काब बिन जुहैर हूँ। देखिए हिकमत की बात नोट कीजिए, यानी जब देखा ना कि अल्लाह के नबी ने तो मुझे नहीं पहचाना तो फौरन ही फिर आपके सामने आ गए और अपने आप को पेश किया। देखिए ये अकलमंदी होती है, ये कोई होशियारी या चालाकी नहीं होती, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी कहते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत होती है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये बातें पता होती हैं और बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो ऐसी कोई दो बातें नहीं करते। ये दो बातें नहीं होती, ये हिकमत का तकाजा है कि कभी कभी दूसरे को जो भी कह लीजिए कि आपका मुखालिफ है या आपके पीछे है, आप उसको बेहतरीन तरीके से अपनी ये बातें बताइए कि आप अपनी हिकमत और अक्लमंदी के साथ इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही लेंगे। खैर, जब इन्होंने कहा मैं काब बिन ज़ुहैर हूँ, तो ये सुनकर एक अंसारी साहब इन पर झपट पड़े और इनकी गर्दन मारने की इजाज़त चाही। आपने फरमाया छोड़ दो, ये शख्स तायब होकर यानी तौबा कर कर और पिछली बातों से हाथ खींच कर आया, यानी ये भी तो तौहीन रिसालत के मर्तकीब थे, इसको नोट किया करें। आपके सामने बैठा है वो शख्स जिसने आपकी हज की, आपका मजाक उड़ाया, और आप कह रहे हैं छोड़ दो, इसने तौबा कर ली, तो आप लोगों को क्यों नहीं माइल करते तौबा करने पे? आप क्यों उनको मजीद स्टबन करते हैं उनके गलत कामों पे? अच्छा अखलाक, अच्छे मामलात बड़े से बड़े पत्थरों को पिघला देते हैं। आप बताइए, नहीं हम मुस्लिम ऐसे नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप जो मर्जी करें, हम तो रिएक्शन में नहीं आ रहे। और अपने दीन पे कायम रहकर अगर मुसलमान अपना अखलाक दिखा देना, तो बड़े से बड़ा फिरौन क्यों ना हो, वो भी ज़रूर सोचेगा कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। इसके बाद फिर इसी मौके पर काब बिन ज़ुहैर ने अपना मशहूर कसीदा आपको पढ़कर सुनाया, जिसकी इब्तदा यूँ है। कहते हैं कि बियन तस्वादु फ़क़ल बिल यौम मतबूल, मुतीमु असरी हा लम यदित मकबूल। क्या मतलब? मुआद दूर हो गई तो मेरा दिल बेकरार है, इसके पीछे वारफ्ता यानी बेचैन और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसका फ़दिया नहीं दिया गया। इस कसीदे में काब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत करते हुए, आपकी मदह करते हुए आगे यूं कहा, मैं आपको उर्दू तर्जमा सुना देती हूँ ताकि आप इंजॉय करें। कहते हैं कि मुझे बताया गया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे धमकी दी है, हालांकि अल्लाह के रसूल से दरगुजर की तवक्को है। आप ठहरें, चुगलखोरों की बात ना लें, वो ज़ात आपकी रहनुमाई करे जिसने आपको नसीहत दे यानी नसाइख और तफसील से पूर कुरान का तोहफा दिया है। अगरचे मेरे बातें में बातें बहुत कही गई हैं, लेकिन मैंने जुर्म नहीं किया। मैं इसी जगह खड़ा हूँ और वो बातें देख और सुन रहा हूँ कि अगर हाथी भी वहाँ खड़ा हो और इन बातों को सुने और देखे तो थर था जाए यानी थरा अगर देखे तो थराता रह जाए, थराता रह, जमीन कांपना शुरू हो जाए। इन बातों को अगर हाथी भी वहाँ खड़ा हो और इन बातों को सुने और देखे तो थर्राता रह जाए, सिवाय सूरत के कि इस पर अल्लाह की इजाज़त से रसूल की नवाजिश हो। हत्ता कि मैंने अपना हाथ बग़ैर किसी झगड़े के यानी किसी नज़ा के बग़ैर इस हस्ती मोहतरम के हाथ में रख दिया, जिसे इंतकाम पर पूरी कुदरत है और जिसकी बात बात है। जब मैं इससे बात करता हूँ, हालांकि मुझसे कहा गया कि तुम्हारी तरफ फुलां फुलां बातें मंसूब हैं और तुमसे पूछा जाएगा यानी सवाल जवाब होंगे, तो वो अब मेरे नज़दीक इस शेर से भी ज़्यादा खौफनाक होते हैं जिसका कछार किसी हलाकत खेज वादी के बतन में वाक़े किसी ऐसी सख्त ज़मीन में हो जिससे पहले भी हलाकत ही हो। यकीनन रसूल एक नूर हैं जिनसे रोशनी हासिल की जाती है, अल्लाह की तलवारों में से एक सौंती हुई हिंदी तलवार है। क्या आप देखिए, लफ्ज़ खूबसूरत है ना, असल में हम उस तरह का अदब नहीं रखते। मुराद ये कि इन्होंने अपने नशार में नबी सल्लम के हिल्म की और आपके माफ़ करने की और आपके बारे में जो भी इनके दिल में अच्छे जज्बात थे उसकी अक्कासी की है। इसके बाद काब बिन ज़ुहैर ने मुहाजरीन कुरैश की तारीफ़ की, क्योंकि काब की आमद पर इनके किसी आदमी ने खैर के सिवा कोई बात और हरकत नहीं की थी, लेकिन इनकी मदह के दौरान अनसार पर तंज की, क्योंकि इनके एक आदमी ने इनकी गर्दन मारने की इजाज़त चाही थी। वही ऊपर जो पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने जब इनको पहचान लिया तो सहाबा को ज़ाहिर अल्लाह के नबी से मोहब्बत बहुत थी, तो इसी मोहब्बत की वजह से फिर लोगों ने सोचा कि चलिए हम इनको मार देते हैं। तो उस पे तारीफ़ करते हुए कहते हैं, वो कुरैश खूबसूरत मटकते ऊँट की चाल चलते हैं और शमशीर जनी यानी तलवार चलाना इनकी हिफाजत करती है, जबकि नाटे खोटे काले कलोटे लोग रास्ता छोड़कर भागते हैं। लेकिन जब वो मुसलमान हो गए और इनके इस्लाम में उमदगी आ गई, तो उन्होंने एक किस्सा एक कसीदा अंसार की तारीफ़ में किया और इनकी शान में इससे जो गलती होगी इसकी तलाफ़ी की। यहाँ भी नोट करने का नुक्ता है, कभी कभी साथ चलते हुए कुछ लोगों के बारे में बदगुमानियाँ आ जाती हैं, जहाँ आपको एहसास हो कि ऐसा नहीं था, फ़ौरन जाकर शिकन कीजिए। आई एम सॉरी कहना दुनिया का मुश्किल तरीन जुमला है, लेकिन उसके लिए बहुत आसान है जो अपने नफ्स को काबू पाए और अपने आप को अल्लाह के आगे बेच दे। तो उस कसीदे में क्या कहा उसने, कहता है कि जिसे करीमाना ज़िंदगी पसंद हो वो हमेशा साले हंसार के किसी दस्ते में रहे। उन्होंने खूबियां बाप दादा से विरसे में पाई हैं। दर हकीकत अच्छे लोग वही हैं जो अच्छों की औलाद हो। तो गोया कि इन्होंने अल्लाह के नबी के साथ फिर अंसार का जो ताल्लुक़ था उसकी तारीफ़ की। इसी तरह छठा एक वफद है जिसको वफद अज़रा कहते हैं। ये वफद सफ़र 9 हिजरी में मदीना आया। 12 आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें हमज़ा बिन नौमान भी थे। जब इस वफद से पूछा गया कि आप कौन लोग हैं तो इनके नुमाइंदों ने कहा कि हम बनू अज़रा हैं, कुसई यानी कुसई के अख़याफ़ी भाई, सौतेले भाई। हमने ही कुसई की मदद की थी यानी उनको उनकी तायीद की, वेरीफाई किया, और खुजाया और बनू बकर को मक्का से निकाला था। यहाँ हमारे रिश्ते और कराबतदारियाँ हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश आमदेद कहा और मुल्क शाम के फतह किए जाने की बिशारत दी। नीज़ इन्हें काहिना औरतों से सवाल करने से मना किया यानी मुस्तकबिल का हाल पूछना, फॉर्चून टेलर्स, और इन ज़बीहों से रोका जिन्हें ये लोग हालत शिर्क में ज़िबह किया करते थे। इस वफद ने इस्लाम कबूल किया और चंद रोज़ ठहर कर वापस आ गया। इससे क्या पता चलता है कि लोग बड़ी बड़ी अखलाकी खराबियों का भी शिकार होते हैं, लेकिन जब आप उनको दीन इस्लाम दिखा देते हैं, उनका तज़किया हो जाता है, फिर उनकी तरबियत हो जाती है, तो फिर वो अपने हाल को बदलते हैं। देखिए, लोगों को उनकी बुराइयों के साथ कबूल कीजिए, लोगों को उनकी खामियों कमियों बेशियों के साथ कबूल कीजिए। बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको। आहिस्ता आहिस्ता कमियाँ दूर हो जाएंगी, खामियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आप ये कहें ना कि परफेक्ट लोग मेरे साथ रहें तो आप अकेले ही रहिए। आप तो खुद भी नहीं है परफेक्ट, किसी और को कहाँ करेंगे। और एक ही ज़ात है जो अल्लाह की ज़ात है, तो हमेशा अपने लिए खुशकिस्मती समझा करें इस बात को कि चलें गलतियाँ करते हैं ना, साथ तो हैं, अकेला बंदा क्या जीता है। और ऐसे लोग आप देखिए कि एक दिन आता है कि फिर आपके लिए बहुत सारी कामयाबियों का ज़रिया बनते हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें अपने लिए बेहतरीन रखे। सिर्फ़ एक और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा वक्त चूँकि शुरू में लग जाता है, और अभी अगर आप सदका कर दें वक्त का तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वफद बली, ये रबीउल अव्वल सन 9 हिजरी में मदीना आया और मुसलमान होकर 3 रोज़ वहाँ रहे। क्याम के दौरान वफद के जो बड़े थे यानी उनके सरदार या रईस अबुल अबुल दबीब, उन्होंने पूछा कि क्या मेहमान नवाजी में भी अजर है यानी किसी को खिलाना पिलाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, किसी मालदार या फ़कीर के साथ जो भी अच्छा सलूक करोगे वो सदका है। इसने पूछा, अच्छा कितने दिन तक हम मेहमान रह सकते हैं यानी मुद्दत दियाफ़त, मुराजे के मेहमान के हक कितने दिन तक पूरे होते हैं। तो आपने फरमाया कि 3 दिन। इसने पूछा, अच्छा मुराजे के उसके बाद उसको आम खाने में शामिल करो। अब ये नहीं कि कोई पाकिस्तान से आया था अब उन्हें क्या, अब आप जाइए मुरादे के 3 दिन खूब इज्जत कीजिए, ज़्यादा खिलाइए पिलाइए, अच्छी टेक केयर करें, उसके बाद जो फिर आम आपकी ज़िंदगी है उसमें शामिल करें। फिर उसने अगला सवाल किया कि किसी लापता शख्स की गुमशुदा बकरी भेड़ बकरी मिल जाए तो क्या हुक्म है। आपने फरमाया, वो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए या फिर भेड़िए के लिए। मुराजे के अगर तुम नहीं लोगे और उसका मालिक मिल नहीं रहा तो भेड़िया खा जाएगा। इसके बाद उसने गुमशुदा ऊँट के मुतालिक सवाल किया। आपने फरमाया, तुम्हें इससे क्या वास्ता, इसे छोड़ दो यहाँ तक इसका मालिक इसे पा जाए। मुराद ये था कि ऐसे ही इतने सवाल करने की ज़रूरत नहीं, और जिसकी चीज़ है आखिर वो भी तो ढूंढ रहा होगा ना, और जब वो लोग उसको पा लेंगे तो ले जाएंगे। वफद सकीफ, ये वफद रमज़ान 9 हिजरी में तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर हुआ। इस कबीले में इस्लाम फैलने की सूरत यह हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीक़ादा सन 8 हिजरी में जब ग़ज़वाए ताइफ से वापस हुए तो आपके मदीना पहुँचने से पहले ही इस कबीले के सरदार उरवा बिन मसूद ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अपने कबीले में वापस जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी। वो चूंकि अपनी कौम का सरदार था, और सिर्फ यही नहीं कि इसकी बात मानी जाती थी बल्कि इसे इसके कबीले के लोग अपनी लड़कियों और औरतों से भी ज़्यादा महबूब रखते थे, इसलिए इसका ख्याल था कि लोग इसकी इताअत करेंगे। लेकिन जब इसने इस्लाम की दावत दी तो इस तवक्को के बरखिलाफ़ लोगों ने इस पर हर तरफ से तीरों की बौछार कर दी और इसे जान से मार डाला। फिर इसे कत्ल करने के बाद चंद महीने तो यूं ही मुकीम रहे, लेकिन इसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि गिर्दोपेश का इलाका जो मुसलमान हो चुका है, इससे हम मुकाबले की ताब नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने बाहम मशवरा करके तय किया कि एक आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजें, और इसके बाद अब्दिया लैल बिन आमर से बातचीत होगी, मगर वो तैयार ना हुआ। इसे डर क्या था कि कहीं इसके साथ भी वही सलूक ना किया जाए जो उरवा बिन मसूद के साथ किया जा चुका है। इसलिए उसने कहा कि मैं ये काम इस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ मज़ीद कुछ आदमी ना भेजो। लोगों ने इसका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया और इसके साथ हलीफों में से दो आदमी और बनी मालिक में से तीन आदमी लगाए। इस तरह कुल छः आदमियों का वफद तैयार हो गया। इस वफद में हज़रत उस्मान बिन अबी लास सकफ़ी भी थे जो सबसे ज़्यादा कम उम्र थे। जब ये लोग खिदमत नबवी में पहुंचे तो आपने इनके लिए मस्जिद के एक गोशे में कुब्बा लगवा दिया ताकि ये कुरान सुन सकें और सहाबा कराम को नमाज पढ़ते हुए देख सकें। फिर ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते रहे और आप इन्हें इस्लाम की दावत देते रहे। आखिर इनके सरदार ने सवाल किया कि आप अपने और सकीफ के दरमियान एक माहिदा सुलह का लिख दीजिए जिसमें जिनाकारी, शराब नोशी और सूदखोरी की इजाज़त हो। नोट करिएगा, उस दौर में भी लोग ऐसे मुतालबे करते थे कि ठीक है, रहे इस्लामी, लेकिन मर्ज़ी की हमारी बातें, हमारी मर्ज़ी का इस्लाम पेश करेंगे हम। अब इनके माबूद लात को बरकरार रखा जाए, इन्हें नमाज से माफ़ रखा जाए और इनके बुत खुद इनके हाथों से ना तुड़वाए जाएं। लेकिन रसूलुल्लाह ने इनमें से कोई भी बात मंजूर ना की। अमल का नुक्ता वाज़ेह, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा उन्होंने तन्हाई में मशवरा किया, मगर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर करने के सिवा कोई तदबीर नज़र ना आई। क्या पता चला कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स गलत चीज़ों पे ओके नहीं कहते, टेक अ स्टैंड। आखिर उन्होंने यही किया और अपने आप को अल्लाह के नबी के हवाले करते हुए इस्लाम कबूल किया। अलबत्ता ये शर्त लगाई कि लात को ढाने का इंतज़ाम आप खुद फरमा लें, सकीफ इसे अपने हाथों से हरगिज़ ना ढाएंगे। आपने ये शर्त मंजूर कर ली। यहाँ देखिए कि जब इसमें कोई हर्ज नहीं था तो आपने कहा ठीक है, इस बात को ज़िद नहीं बनाया कि नहीं तुम अपने हाथों से करो। दीन के अंदर शिद्दत नहीं होनी चाहिए और लीडर्स को मौके महल के मुताबिक अपनी चीज़ों को दोबारा रीथिंक के हिसाब से करना चाहिए। खैर, आपने ख़त लिखा, शर्त भी मंजूर की, एक ख़त लिखा और उस्मान बिन अबी लास सकफ़ी को इनका अमीर बनाया, यानी लीडर बनाया, क्योंकि वही इस्लाम को समझने और दीन और कुरान की तालीम हासिल करने में सबसे ज़्यादा पेश पेश और हरीस थे। यहाँ भी पता चला कि किसको बड़ा बनाया जाए जो सबसे ज़्यादा जानने वाला हो। इसकी वजह यह थी कि वफद के अरकान हर रोज़ सुबह मस्जिद नबी खिदमत नबी में हाजिर होते, यानी नबी सल्लम के पास आते, लेकिन उस्मान बिन अबी लास को अपने डेरे पर छोड़ देते। इसलिए जब वफद वापस आकर दोपहर में कैलूला करता तो उस्मान बिन अबी लास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कुरान पढ़ते और दीन की बातें पूछते। फिर आप जब आपको आराम करता हुआ पाते तो इसी मकसद के लिए फिर अबू बकर की खिदमत में चले जाते। उस्मान बिन अबी लास की गवर्नरी बड़ी बाबरकत साबित हुई। देखिए, इतना शौक था सीखने का कि जब अल्लाह के नबी आराम करते तो अबू बकर से जाके सीखने लगते। तो अल्लाह ने इनके इस लीडरशिप में और इन गवर्नरी से मरा ये कि आपको बड़ा बनाया गया, इसमें बरकत दी। तो क्या पता चला कि हमेशा सीखने का शौक़ होना चाहिए। रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जब खिलाफत सिद्दीकी में इर्तदाद की लहर चली और सकीफ ने भी मुर्तद होने का इरादा किया तो इन्हें उस्मान बिन अबी लास ने मुखातिब करके कहा, सकीफ के लोगों, तुम सबसे आखिर में इस्लाम लाए हो, इसलिए सबसे पहले मुर्तद ना होना। नोट कीजिएगा, ये है असल में आजमाइश। लीडर के हटते ही इर्तदाद शुरू, और ये इतना बड़ा फितना था कि अबू बकर सिद्दीक जैसे कमज़ोर शख्स के लिए एक बहुत बड़ी इम्तिहानगाह बन गई। ये सकीफ के लोग जिनका ऊपर जिक्र पड़ रहे हैं यही मुर्तद होने लगे तो उस्मान बिन अबी लास ने रोक लिया। इससे तो चलता है कि अच्छे लोग हों तो वो माइंड चेंज करने वालों या पलटने वालों को वापस रग़बत दिलाकर मोटिवेट करते हैं और फिर उससे फ़ायदा होता है। क्या हुआ? ये सुनकर लोग इर्तेदाद से रुक गए और इस्लाम पर कायम रहे। बहरहाल वफद ने अपनी कौम में जाकर असल हकीकत छुपाए रखी और कौम के सामने लड़ाई और मार धाड़ का हवा खड़ा किया और हुस्न व गम का इजहार करते हुए बताया कि अल्लाह के नबी ने इनसे मुतालबा किया है कि इस्लाम कबूल कर लें और जिना शराब और सूद छोड़ दें वरना सख्त लड़ाई की जाएगी। ये सुनकर पहले तो सकीफ पर जाहिलियत का जो एक कह लीजिए हिमायतीपन था वो गालिब आया। वो 2-3 रोज़ तक लड़ाई ही की बात सोचते रहे कि चले फिर हम जाके लड़ते हैं मुसलमानों से। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके दिलों में रोब डाल दिया और उन्होंने वफद से गुजारिश की कि वो फिर रसूलुल्लाह के पास वापस जाए और आपके मुतालबा तस्लीम कर ले। इस मरहले पर पहुंचकर वफद ने फिर असल हकीकत जाहिर की और जिन बातों पर सुलह हो चुकी थी इनका इजहार किया तो सकीफ ने उसी वक्त फिर इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें भी सीखने की बातें हैं बहुत सारी। जब तक पूरी तरह दिल अंदर नहीं होता ना तो इंसान बात चाहे सच ही कह रहा होता है लेकिन अधूरा सच बोलता है। और एक जुमला लिख लें, अधूरे सच झूठ से भी ज़्यादा बड़ी तबाही मचाते हैं कभी कभी। खैर ये जब मुसलमान हुए तो अब अगला मरहला था कि लात को ढाया जाए। अल्लाह के नबी ने खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में यानी उनको लीडर बनाया। चंद सहाबा का एक छोटा सा ग्रुप दिया तो मुगैरा बिन शोबा ने खड़े होकर गुजरना गुर्ज उठाया यानी कह लीजिए गुर्ज को आप गज कह लीजिए हेंटर डंडा और अपने साथियों से कहा कि वल्ला ही मैं ज़रा आप लोगों को स्कीफ पर हंसाऊंगा यानी तबीयत में मजाक था। खैर क्या किया, लात पर वो डंडा मारा और खुद ही गिर पड़े और रेड़ियां पटकने लगे। ये बनावटी मंजर देखकर अहले ताइफ पर होल तारी हो गया। कहने लगे अल्लाह मुगीरा को हलाक करे इसे देवी ने मार डाला। जाहिर है कि मुशरिकों को लगता था ये मरी देवी है तो अब देवी पे जब किसी ने गुर्ज चलाया तो गोया कि उनके ख्याल देवी ने उस पर अपना वबाल डाल दिया। इतने में हजरत मुगीरा उछल कर खड़े हो गए और फरमाया अल्लाह तुम्हारा बुरा करे ये तो पत्थर और मिट्टी का तमाशा है। फिर उन्होंने दरवाजे पर जर्ब लगाई और इसे तोड़ दिया। इसके बाद सबसे ऊंची दीवार पर चढ़े और इनके साथ कुछ और सहाबा भी चढ़े। फिर इसे ढाते ढाते ज़मीन के बराबर कर दिया हत्ता कि इसकी बुनियाद भी खोद डाली और इसका जेवर और लिबास निकाल लिया। ये देखकर सकीफ दम बखुद रह गए, हैरान हो गए कि हमारी देवी या हमारा खुद साख्ता कह लीजिए कि जो माबूद था वो तो कुछ भी नहीं कर सका। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ेवर और लिबास लेकर अपनी टीम के साथ वापस हुए और रसूलुल्लाह ने सब कुछ उसी दिन तकसीम फरमा दिया और नबी की नुसरत और दीन के एजाज़ पर अल्लाह की हम्द की। तो कितना कुछ है सीखने का। पता क्या चला कि आपने अमली इकदाम किए। आज हम अभी तक ना पाक कर सके उन चीज़ों से जिसके ऊपर आज भी लोग जमे हुए हैं तो क्या पता चला कि फतह मक्का ऐसे ही नहीं पूरी हो गई। आपने वही हदीस के बुराई को हाथ से रोको ज़ुबान से रोको दिल में बुरा को तो जिन चीज़ों को आप अपने अपनी हाथ से ख़त्म कर सकते थे आपने किया। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें नबी सल्लम जैसी हिकमत फहम अता फरमाए। आपने इसमें क्या सीखा आप लोग शेयर कर सकते हैं।
जी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सी बातें थी सीखने पे। भी सुने सुनाई बातों पर यकीन नहीं ना करें, कोई कितना भी दिल दुखाए अल्लाह की खातिर माफ कर दें और नेकियों में साबिकुन अव्वलून बने और समय ना वादा ना करें। मुश्किल हालात में हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, अल्लाह से परफेक्ट होते हैं, फिर लोगों में तो खामी आती है। जजाकल्लाह खैर सिस्टर। जी बिल्कुल, फर्म इन बिलीव नो मैटर व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल जजाकल्लाह जी सर जी। बस देखें कितनी चीजें हम लोगों ने सीखी ना, आप की हिकमत अमली कितनी, क्या आप हालात देख लेते थे और जहाँ काम की जरूरत जिस तरह से होती थी और बेस्ट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी कितनी चीजें हमें पता चलती हैं कि आप छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल रखते थे और बेहतरीन प्लानिंग, यानी अगर हम कोई भी काम शुरू करें दीन का कहीं भी करें तो प्लानिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जितनी प्लानिंग बेहतरीन की होगी और उसके साथ साथ मैनेजमेंट अच्छी हो और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी साथ शामिल हाल होगी। और इसके लिए अमल की हमारे लिए ये बात थी कि अपने मकसद के साथ हमें मुखलिस होना है, काम करने का तरीका दुरुस्त और ठीक रखना है और अपनी नीयत को ठीक रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। जी एक सिस्टर क्वेश्चन लिख रही हैं। क्वेश्चन है, सिस्टर शफक लिखते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द वे पीपल टॉक अबाउट अ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम?
जी फिर बोलिए कि क्या लोग बोलते हैं, दोबारा
व्हाट
बोलें
अबाउट द वे पीपल टॉक अबाउट आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम?
आप। अच्छा बोलिए, आप सुने ही ना, कोई बुरी बात लगती है तो आप सोचे पता नहीं किसको कह रहे हैं, मैंने तो नहीं जानता। यानी हमेशा इग्नोर ग्रेसफुली के रवैये पे अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी बातें सुने और सोचे पता नहीं किसकी बातें हैं, हमारे नबी की तो ये कोई बात नहीं है, दैट्स इट। वही बात, अपनी मौत आप मर जाएगी। जितनी क्लैरिफिकेशंस देते खतरे ना करते, बल्कि इसका इलाज ये कीजिए कि आप वो कीजिए जो नहीं करते, इसका और गुस्सा रखिए, ग्रज रखिए, क्योंकि हमारे अंदर ही कोई कमी होगी तभी तो ऐसा हुआ ना। तो हमेशा पॉजिटिव लीजिए और अपने ऊपर लीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर इन चीज़ों को डालिए। ठीक है
जी
जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह आप यहाँ रुक जाते हैं, अल्लाह ताला आपके
अच्छा
मेरे वक्त में बरकत दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम।